मैं सर्वप्रथम अपने परम पराक्रम गुरुदेव स्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। आपको दर्शन करके राम नारायण की स्वामी महाराज जो यहाँ या शासन से आसीन हैं और हम सब का अपनी कृपा करने के लिए अपनी 88 वर्ष की आयु में भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। आवाज नहीं आ रही, क्यों जा रही है?
बोल
तत्पश्चात
नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा, इसमें भी
उससे उनको देखो वो कहीं नहीं सुनाई, नहीं सुनाई दे रहा था ना,
लेकिन हम भी नहीं सुन पाते,
नहीं सुन रहे थे ना,
उसको हटा दिया,
पर ये हटा दिया गुरुदेव, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसे ही बोल दूंगा, जोर से बोल दूंगा।
अरे नहीं, हम नहीं, इसका पकड़ लीजिए ना, इसका सुनो, जहाँ गोविंद हो आनंद गोविंद मेरे है गोपाल मेरे है
और अगर हम ऐसे महात्मा के भोग
ये ऑस्ट्रेलिया से आए, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं।
फिर देखो कितनी जल्दी हम पवित्र होंगे।
आपको
क्या होंगे?
हमारा
पवित्र
एक्सरे मिला दांतों का?
नहीं अभी देखो,
अभी देखो बता रहे हैं
हो गया तो अभी पांच छह
दिन आ जाओ। देखो हम शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर के साथ का कपड़ा है। चलना करो आप अपने कपड़े को रोज मुंह तरफ एक्सेल से धो खुद बचाओ। तो क्या होगा कपड़े को रोज धो तीन से चार बार धो लेकिन खुद बचाओ तो क्या होगा? ऐसे ही अगर हम शरीर को खुद धोए
हम बंबई से
शैंपू से धोए और साबुन से धोए लेकिन आत्मा को ना धोए
सिडनी ब्रिस्बेन सब जगह
है। तो क्या
आइए प्लीज
जब आत्मा की है तो हम पवित्र होते हैं।
और पार्क में भी गए आप?
पार्क में भी आप एक कपड़ा धो
अभी कपड़ा
धुलवा दूसरे कपड़े को धुलाओगे तो साफ नहीं होगा। लेकिन पवित्र की ये भूमि है कि वो खुद भी पवित्र हो जाती है और साथ में सारे वाले को भी पवित्र करते
हैं। यहाँ पर लाखों लोग करते हैं
और पवित्र हो जाना ये भी अंदर है। तो जो पवित्र हो जाता है उसका क्या गुण है? पवित्र होने वाले का गुण है कि उसके पाप दूर हो गए वो निष्पाप हो गया। निष्पाप हो गया मतलब वो जैसा है वैसा आत्मा अपने भी अवस्थित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसलिए होगा और कोई पाप का बल और भार नहीं होता। तब ये आत्मा तो सही स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता कुंजी और आप उठाते हुए भगवान के चरणों की सेवा के लिए अग्रसर हो जाती है। ये साधना का गुण है।
आप लोग कहाँ से आए?
मुंबई। जब ये भगवान की सेवा में निमग्न हो जाती है और संसार का साफ कर देती है यही
निष्पाप होता।
मैंने गुरु माता जी के और यहाँ सभी लोगों के मुख से जरना है
बहुत कठिन
ही समय हम इस रहस्य जीवन में हम सबका कल्याण क्या है? तीन चीजें जो हमें क्या क्या तीन चीजें? एक
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हम ऐसे
हरे राम
परम वैष्णव के समूह आगे हरी कथा जब सुनेंगे इसके श्रवणनाथ से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हमारे अंदर भगवान का कल्याण। जब ऐसे महात्मा हमारे समूह नहीं है तब हम ऐसे महात्माओं के द्वारा स्थापित शिवजी मिले मंदिर के धंधा जो हमारे राधा माधव और चैतन्य महाप्रभु ये मूर्ति किसी भी काल के और हम लोग इन इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर सकते और भगवान हम पर दयालु होकर दो रूप से इस धरती पे प्रकट होते हैं ताकि हम सेवा करके अपना कल्याण कर सके। एक रूप है श्री विग्रह विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? हमारी सेवा। और दूसरा है हरिनाम। हरिनाम लेते ही भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाता है। तो महात्मा के दर्शन उनके मुझसे हरि कथा और उनके लाल श्री विवेक का सेवन और हरिनाम इन तीन चीजों से हमारा सारे पाप दूर होंगे, हमारा कल्याण होगा। यही मनुष्य जीवन का एक उपाय है। गुरुदेव का यही हमें संदेश है कपड़े धोने से ज्यादा अपने शरीर को धो फिर कपड़े धो। कपड़ा धोना सेकेंडरी चीज है, शरीर धोना फर्स्ट चीज है, ऐसे ही पहले आत्मा को दो और उसके बाद इस शरीर को दो। ये शरीर इस आत्मा का
कपड़ा है।
और प्रेमानंदे
दस मिनट
नमो विष्णुपदाय राधिकाय पुण्यां श्रीमद्भगवद्गीता पुराणाय नमोमि नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय विष्णुपदाय पुराणाय नमोमि श्री विष्णुचैतन्य भगवत्याम अभी सुबह गुरुदेव हर की पौड़ी पे मुझे मिले और मुझे बोला तुमने स्नान कर लिया है।
अज्ञानता में है और गदा सुनने के बाद भी ये सब बातें करता है।
इसीलिए हमारे गुरुदेव उसी नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, कलयुग में नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं वही बलराम जी, और उनके एक भजन का क्या कहा गया है,
गंगा जावा पधारी आरती ये गावे, गंगा जावा पधारी आरती ये गावे।
स्वयं बलराम जी की उस नित्यानंद प्रकाश स्वयं गुरुदेव के चरणों को पाके अपने आप को पवित्र समझने लग जाती है। इससे बड़ी क्या बात है कि हम स्वयं गुरुदेव के आंखों से दर्शन हम ले लेंगे तो हजारों हजारों हम गंगा के स्नान भी कर ले। स्वयं गंगा जी का अपने आप को पवित्र समझ रही है कि ये पास आए ऐसा सत्ता है कि मुझे बहुत पवित्र करेगा। ये हमारे घर में कहा है गंगा जाल पर जले हर्षीय हर्ष सत्ता बढ़ी हर्ष पूर्वक खुशी से ऐसे संतों के मेरे पास शरण पड़े। आज गंगा भी पवित्र हो गई है, ये सबसे बड़ी खबर थी हमारे लिए। तो आज हमारे सदगुरु हमारे बीच में है, जिन जिन लोगों को इनके दर्शन हो रहे हैं चाहे किसी तरह से या ज्ञान का से या ज्ञान से, मैं सोचता था कितने जीव आत्मा यहाँ पे बनी है और कितने ये जान सकते हैं कि ऐसा सदगुरु हमारे आस पास खड़ा है, क्या होगा ऐसा। लेकिन गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि आप व्यक्ति कितने अपना स्नान कर ले और दिखाते हैं कि मैं पवित्र होकर आया हूँ। ये गुरुदेव की ये लीला है। और दूसरे से जब हमारी उत्तर छोटे बात हो रही थी जब तक ये महात्मा लोग ही हमें नहीं पता, यही हमारे अंदर प्रश्न पैदा करते हैं और उसी का उत्तर देते हैं। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, वैराग्य युक्त भक्ति रसम प्रयागराज अपाय माता भिक्षुम अंधम कृपा बुद्धे यो परालोका के सनातनम तुम प्रभु आश्रयामि अनभिक्षुम। कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं थी भक्ति करने की, मैं अभी बाप का बेटा इतना कुछ मेरे पास, लेकिन सनातन गोस्वामी मेरे गुरु ने ही मेरे अंदर कृपा भर के उसी इच्छा को जगाया। न हमें प्रश्न आते हैं न हमें उत्तर आते हैं, ऐसे संतों ने ही हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा करके आज हम इन संतों के करीब आए हैं। हम इनसे सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं, हमारा कि हम लोग पापी हैं अपराधी हैं जो भी हैं जो भी हैं, हम आपके हैं, आपके चरणों में हमें हमेशा शरण देते रहिए और हमारा कोई भी तरीका बचने का नहीं है। चाहे वो हजारों दीपों के स्थान में हम चले जाए, लेकिन जब तक हम संतों की हम ऐसे सदगुरु के चरणों में नहीं आएंगे हमें नहीं समझ आएगा कि हम कहाँ आए।
जितना तब नहीं बोले देगा तीर्थ भाई आ रहे हैं।
दस पंद्रह मिनट बोले।
अच्छा
उपस्थित मेरे गुरुशब समस्त सज्जनों माता के बहनों तथा भाइयों सभी को मेरा प्रणाम। अभी अभी पुत्र की आज्ञा हुई है तो शब्दों में कुछ वर्णन करेंगे। अभी अभी पूर्ववर्ती श्रोताओं ने गंगा जी की महिमा पर वर्णन किया है क्योंकि भुवन पाव में गंगा देखो इस संसार इस भारत भूमि को पाव करते हुए जो कि यहाँ से प्रवाहित ब्रह्म ऋषि चलते और गंगा जी मंदाकिनी के नाम से और आकाश गंगा के रूप से सीधा स्वर्गलोक चंद्रलोक सप्तर्षि लोक और गंगा कैलाश शिव के मस्तक पर अवतरित हुए और मस्तक में से गंगा जी वहां से निकल करके हिमालय के ऊपर से इस रास्ते से निकली और यहाँ के सप्तऋषि बैठे हुए सातों ऋषियों ने कहा हमारे सामने से जा नहीं तो हम जानेंगे तो गंगा जी को सब धारा होकर के यहाँ से निकल इस प्रकार भुवन पाव ने गंगा जो प्रवाहित होती हुई और सीधा आगे निकल कर चली तो मंगल में जाकर के जन्मभूमि में उनका आश्रम तो आती है तो नरेवी यमुना के गंगा जी को पार करके और पार करते ही वहीं तक समाप्त कर दिया। आगे जाने पड़ेंगे फिर भगीरथ जी ने जब प्रार्थना की तब उन्होंने अपना जान छीन करके गंगा जी को अपने बेटे के रूप में निकाल के गंगा जी को प्रवाहित कर दिया। फिर गंगा जी आगे बढ़ी कमलता से आगे चल कर के गंगा अब बिहार को जाए तो गए नहीं तब सतमुखी सैकड़ों धारा में प्रवाहित होकर के गंगा सागर में जाकर के जहाँ भगीरथ के कुल में सैकड़ों महाराज के 7,000 पुत्रों सहित असंख्य सेना सभी जो कपिल मुनि के प्रति अवराध कहने के कारण भस्मीभूत हो गए गंगा जी के स्पर्श से सभी दिव्य चंद्रों के रूप धारण करके पवित्र धाम चले। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे जब परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे थे तो उस समय परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से आग्रह किया कि हे महाराज हे प्रभु जो भुवन पावन संसार को पवित्र करती समस्त लोकपालों के सही
जिनके दस
सभी कुछ दूर हो जाता है, हृदय पवित्र होता है और साथ ही साथ भगवान के चरणों में अनंत भक्ति का उदय होता है। ऐसे महात्माओं की कृपा वाला ही जीवन में सबसे बड़ा लाभ होता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए आज इस देवभूमि में देखा जाए तो चारों ओर मंदिर और बड़े बड़े आश्रम सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने को मिलता है, नहीं तो सोहम लिखा हुआ है तो कहीं शिवोहम लिखा हुआ है, कहीं मम ब्रह्मास्मि नहीं करता प्रश्न। इसका मतलब मैं ब्रह्म हूं और वही सभी कुछ ब्रह्म है, मैं शिव हूं। इस प्रकार सभी भक्ति को ब्रह्म बनते भी सभी शिव बनने में लगे हुए हैं, वही भगवान की ब्रह्म की परब्रह्म की सेवा में लगे, उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाए, पावन बनाए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाए, ये भाव है लोगों में नहीं है। देखिए तो सभी कुछ होता है, परंतु आप इस देवभूमि में श्री गुरु पाद पद्म जैसे ऐसे दिव्य पुरुष भगवान की अवतार करुणा की मूर्ति यहाँ सौकर से घूम करके सभी के बीच जो कि हमारे वेद वैदिक सिद्धांत के आधार पर वेदांत प्रकार पर जो भक्ति इसी की पुनर्व्यवस्था क्योंकि सेवा की व्यवस्था है प्रकाशित करने के लिए हम लोग देखते हैं संसार के चार विष्णु समुदाय और एक अद्वैत समुदाय। सभी वेदों के आधार पर श्रीमद् कृष्णदेव और वेदव्यास जी के वेदांत के आधार पर चलते तो कोई अद्वैत वेदांत के पथिक बन गए और कोई द्वैत वेदांत के पथिक। अद्वैत वेदांत के पथिक वे अपने को क्या करते हैं, मैं ब्रह्म हूं सोहम निराकारवादी अहम ब्रह्मास्मि, भगवान की श्रद्धा को मिटा करके मैं खुद ब्रह्म बन जाऊं, संसार में सभी मेरी पूजा करें, इसके लिए सभी व्यस्त है। द्वैतवादी जो कि वैष्णव आचार्यों ने आचार्य श्री रामन जाए श्री मध्वाचार्य श्री विष्णु स्वामी जाए श्री भिम्भट्टाचार्य इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि आए गौर की परंपरा के वैष्णव आचार्य लोग आए। आज हमारे गुरु वर्ग सभी हमारे सामने
नाम क्या है? बत्रा बत्रा है बत्रा बत्रा जी बत्रा भंडारा भी भद्रा जी ने दिया है और मक्का जो था और आपको सात आठ टोले भी लेके आए हैं ये खुद खर्च कर रहे हैं, ये रिश्वत लेने वाले लोगों में से नहीं है।
बहुत से लोग कोई कर्म साधना में कोई देह
किसकी बेटी हो?
मैं मथुरा से हूँ, जम्मू से।
जम्मू से आई?
जम्मू से।
किसके साथ?
मैं इधर पढ़ रही हूँ और मुझे ओम अंकल ने बोला था कि आज आके इधर पढ़ रही हूँ, डॉक्टरी कर रही हूँ।
बहुत अच्छा। कौन सा ईयर है?
अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है।
सभा में हरियाणा के
परम आदरणीय एमएलए श्री बक्त्रा जी उपस्थित हैं। बहुत ही योग्य पुरुष हैं, विचारवान हैं। मैं उनको निवेदन करता हूं कि दो मिनट कुछ यहां आ करके अपना वक्तव्य रख।
ये बता जी रोड से एमएलए हैं और मुझे अभी भी राजू भाई ने बताया है कि वो महाराज जी को कुछ शॉर्ट कर रहे हैं। आज का प्रचार सिस्टम भी उन्होंने किया है। ऐसे पॉलिटिशियन का होते हैं जो देते हैं, लेने वाले तो बहुत सुने हैं।
बतलाइए जो क्या कर रहे
हैं।
यही मेरी प्रार्थना है। और
नेता राजनेता सरकार में लोग अगर भगवान की भक्ति में आए तो शायद प्रजा के ऊपर ज्यादा कल्याण होगा। अब मैं श्री गुरुदेव से चाहूंगा कि वो जो क्षण हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमें कुछ सुनाए। हमारे गुरुदेव की जितनी भी ग्रंथ हैं उसको हमने बाहर लगा दिया है। देखो बिना माइक के बोलो ताकि आप लोग ध्यान से सुनो। माइक से बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता ज्यादा, है ना? और आप लोग सब किताबें लेके जाएंगे, टेबल खाली करके जाएंगे, ठीक है? कोई रोहतक जाएगा चेयरमैन साहब भी आए, कौन कौन से चेयरमैन आए बुलाओ।
प्रणाम करके ये भी आई है,
रोहतक शहर में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है उनके चेयरमैन है,
ये
अध्यक्ष है कांग्रेस आई के, रोहतक कमेटी जो होती है एमसीडी उनके चेयरमैन है,
नगर पार्षद
अजीत जैन कहाँ पर रोहतक के ही है, सब
रोहतक नगर पालिका के
चेयरमैन है, और रोहतक से बहुत लोग, आप लोग रोहतक के रहने वाले हैं, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन है,
ये कार्ड देना है दिल्ली के कितने हैं लोग।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवकृते। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात दंडे स्वामी ब्रह्मचारी गण उपस्थित यहाँ माननीय सज्जन वृंद और भक्त लोग, मैं यथायोग्य सबका अभिवादन करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उद्देश्य है हम लोगों का यहाँ का ठाकुर जी श्री राधा माधव जी का वार्षिक महोत्सव है। इसी जीवन श्री विग्रह की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, इसीलिए हमारे सोमनाथ जी और उनके भाई माता और सब एक वार्षिक अनुष्ठान करते, इसे लोगों का कल्याण होगा। संसार में क्यों सनातनी हिंदू धर्मी है जो भगवान का शिव विग्रह को मानते हैं, उनकी मूर्ति को मानते हैं, इसके अतिरिक्त ईसाई लोग भगवान को का रूप नहीं मानते, मुसलमान लोग भी नहीं मानते, बौद्ध तो भगवान को एकदम मानते ही, कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान यदि जन्म लेंगे उनका शरीर होगा तो उनको मरना ही नहीं होगा, इसलिए ये तो संभव पर नहीं, इसलिए भगवान का कोई रूप ही नहीं। हमारे यहाँ भी सनातन धर्मावलंबी अपने को कहते हैं कि शंकराचार्य के जो अनुयायी अद्वैतवादी मायावादी हैं वे लोग भी भगवान का कोई रूप नहीं मानते, सर्वात्मनि सम ब्रह्म सब कुछ ही ब्रह्म ही, तत्त्वमसि तुम भी ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं भी ब्रह्म हूं, इसका उल्टा अर्थ करके साधारण लोगों को भ्रमित कर देते हैं, साधारण पब्लिक समझ नहीं पाती इस चीज को। मैं संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन करता हूं। पहली बात तो ये सनातन धर्म है क्या, संसार में दो सनातन वस्तुओं में जो संबंध होता है वो सनातन धर्म। ये शरीर जन्मता है और मर जाता है। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। किंतु हाँ, दो वस्तु ऐसी है संसार में जिनका न तो जन्म है न मरण है। पहला, जिसने ये विश्व ब्रह्मांड की, हम आप लोगों की सृष्टि जिसने की है, उसका जन्म नहीं है। वो पहले भी था, अब भी है, सृष्टि से पीछे भी रहेगा। यदि कहो जब भगवान जैसे बौद्धवादी हैं, भगवान है ही नहीं। अरे बेवकूफ, यदि है ही नहीं है कोई बनाने वाला तो अपने आप हो जाता है, तो आज कोई भी चीज आज नई क्यों नहीं पैदा हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदरों के वंशज हैं, बंदरों के वंशज हैं, अब तो करोड़ों वर्ष हो गए, अब मनुष्य से कुछ और दूसरा क्यों नहीं हो जाता। इसलिए ये सब काल्पनिक झूठी थ्योरिया है, विचार है। भगवान है, यदि ये सृष्टि है, इतने रूप है, तो जो बनाने वाला है जरूर उसमें ये सब चीजें हैं, उसका रूप होगा। बाइबल के प्रथम चैप्टर में ये लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने के रूप समान गॉड ने ये सबको मनुष्यों की सृष्टि। अजी यदि उनका रूप ही नहीं है तो ये उसमें क्यों लिखा बाइबल में, तो उसको निकाल दो। है किसी की हिम्मत उन लोगों की जो निकाल दें? कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं किंतु मानते नहीं, और हमारे मुस्लिम भाई भी वैसे नहीं मानते, किंतु उनके कुरान के हदीस में लिखा है इन्ना अल्लाह तआला का मैन सूरत ही अल्लाह खुदा ने अपने रूप के समान में मनुष्यों की सृष्टि की। तो भी निकाल दे, नहीं कर सकते, किंतु ऊपर से नहीं मानते हैं। और हमारे हिंदुओं के यहाँ वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा कहीं नहीं है जो भगवान का रूप नहीं माना गया। सत्य एवं सम्म इदम आत्मराशि, परम सत्य भगवान है, ब्रह्म है, सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि से बाद भी रहेंगे, और सृष्टि जब है तभी रहेंगे, और उनका रूप है। यदि रूप नहीं है तो एक युक्ति देकर के समझा रहे हैं, आम है तो उसका कारण बीज भी है, बिना बीज के आम के बीज के हो जाएगा आम? नहीं हो सकता। यदि कटहल है तो कटहल से कटहल का बीज से ही कटहल होगा, और फिर उसके फूल से फिर बीज निकलेंगे, फिर इस तरह से चल रहा। यदि कोई ये कहते हैं कि जैसे फल है, कोई नीम के बीज से आम या कटहल नहीं हो सकता, जिसमें जिस चीज की पोटेंसी है वही चीज उससे होगा। आम के बीज से आम, कटहल से कटहल, नीम से। एक उदाहरण, गंगा के तट पर
एक ही जमीन पर नीम के, आम के, कटहल के, बबूल के पेड़ के बीज बो दिए और एक ही पानी गंगा के पानी से सिंचन किया गया, एक ही सूर्य से रोशनी हुई, एक ही हवा से वे बढ़े, तो वो बीज एक ही होंगे या अलग 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 होंगे? अलग अलग नहीं होंगे, कभी भी एक नहीं होंगे। इसलिए ये सृष्टि है भगवान का रूप। कहते हैं फ्रॉम नथिंग दिस क्रिएशन हैज बीन डन, हाउ इट कैन बी, देयर मस्ट बी समथिंग और एनीथिंग, फ्रॉम नथिंग क्रिएशन कैनॉट बी। इसलिए कहते हैं हमारे उपनिषदों में पूर्णम एव, पूर्णम एव अवशिष्यते इत्यादि कहा, पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम अवशिष्यते, पूर्ण से कोई भी वस्तु लो पूर्ण ही रहे और कोई भी वस्तु मिला लो पूर्ण ही रहे, वो ना तो कम होगी ना बढ़े, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इक्वल टू इन्फिनिटी, उसी तरह से भगवान इन्फिनिटी परिपूर्ण है, उनसे सारा विश्व सृजन होता है, उन्हीं के अंश हैं और फिर उन्हीं में मिल करके फिर मिल जाते हैं, मिलने का तात्पर्य उनसे मिल करके उनकी सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने विक्रम प्रतिष्ठा की है कि लोग यदि कोई भटका हुआ भी जानते अनजान रूप में आएगा, ठाकुर जी को प्रणाम करेगा या दर्शन भी करेगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने आज से करोड़ों वर्ष पहले जगन्नाथ जी का नीलाचल में शिव विग्रह, रामचंद्र जी ने भी उनका पूजन किया था, बलदेव प्रभु जी ने उनका पूजन किया, बहुत प्रारंभ काल से कृष्ण वहां गए, बलराम जी वहां पर गए और सबका दर्शन वहां पर पेरिकेटाचल में और सब जगहों में, वहां पर नारायण मूर्ति है सब बोलते, और विश्व का सबसे बड़ा धनी वही बैकंठ चल है, वहां पर सभी लोग बड़े बड़े राजा लोग धनी गरीब सभी मनौती करते थे, उनकी मनौती पूर्ण हो जाती है। एक बात दूसरा, ये हम देखते हैं कि वृंदावन में कुछ ऐसे ठाकुर जी हैं या थे, अभी जयपुर चले गए, लोगों से बातचीत करते थे, बच्चों के साथ में खेलते थे, एक सनातन गोस्वामी थे मदन मोहन का नाम सुना है, वृंदावन में थे, मदन मोहन ने कहा गोस्वामी जी मैं आपके साथ में वृंदावन चलना चाहता हूं, मथुरा में चलना चाहते हो, मेरे पास में भाया जाए कुछ नहीं, यशोदा मैया तुमको मक्खन और क्या क्या खिलाती थी और उससे पेट नहीं भरा तो और लोग गायों के बछड़े और लाखों गोपियों के तुम बेटे बन गए और उनका दूध पिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, नमक भी नहीं रखा था, मैं तो सूखी माधुरी रोटी लाता हूँ और वही खा खा के मैं भजन कर, नहीं बाबा हमको ले चलो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, जो कुछ दे देगा पानी अथवा माटुकड़ी सोखी रूटी हुई मैं, तो चलो तो मैं चलू कैसे, मैं तो मूर्ति हूँ, तो मूर्ति है तो बातचीत कर रहे हैं,
जो बात करते चल भी सकते हैं,
तो जब बात करते हैं तो चल भी सकते हैं। आखिर वो उनके साथ में आए, ऐसे इंदिरा गली कुछ नहीं है, पत्थर है तो वो क्यों बोलते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों अनुभव करते हैं? इसलिए भगवान की मूर्ति भक्तों से बोलती है और नास्तिकों को पत्थर देती है। इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठा की कि सोमनाथ जी के परिवार के भाई और दूसरे लोग भी समझेंगे कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसीलिए ये सब किया गया। पहली बात ये अभी तीर्थ महाराज बतला रहे थे, ये समझिए कि हम शरीर नहीं है, इस चीज को समझिए। एक राजा थे, वो युद्ध में मारे गए, उनके परिवार के सभी लोग, स्त्री बेटे बेटा बेटी पिता माता सभी लोग युद्ध करते, बड़े जोर से रोने लग गए, कोई समझाने वाला नहीं था। इतने छोटा सा 5 वर्ष का बालक आया, वो बालक कम था, जमराज सैन थे, उन्होंने आकर के पूछा, भाई ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, ये थे ये मर गए, मर गए, अरे ये पड़े हुए हैं, मरता है, गए तो कहीं नहीं, दिल्ली गए हैं, हरिद्वार जी गए हैं, तो नहीं नहीं वो चले गए, जहां से फिर लौटना नहीं होता, वह छूट मूट कवार करता है, ये तो सोए हैं, इनका कपड़ा कफन उठा लो, देखो तो सो रहे हैं, तो नहीं, इनके अंदर में जो प्राण था वो चला गया है, ये नहीं शरीर नहीं, इसलिए मर गए हैं। उन्होंने कहा, चले, इसी को तो तुमने पिलाया पिलाया, इसी को तुमने बाप कहा, इसी को पुत्र कहा, इसी को अपना पति कहा। उस आत्मा को देखा, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काला है, गोरा है, सांवला है, कैसा है, और तो नहीं तो देखा ही नहीं, तो उसके लिए क्या रोते हो? तब उन्होंने कहा, एक जंगल में 2 कबूतर थे, कबूतरी एक कबूतर, उनको उन्होंने अंडे दिए और उसे 4-5 छोटे छोटे बच्चे पुत्र के लिए जन्म दिया। एक दिन उन बच्चों को घोंसले में रख करके जंगल में गए दाना चरने के लिए, अपने भी खाएंगे बच्चों के लिए भी लाएंगे। उस समय में पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे और दोनों चोंच में चोंच मिलाकर के बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, ओह हम लोगों की कैसी बड़ी सुंदर शादियां हैं, उस दिन बड़ी तड़क तड़क से सब हुआ और हमारे कितने सुंदर छोटे छोटे दिखते हुए बच्चे हैं, आज उनके लिए हम दाना लिए हैं। इतने में देखा कि हरी हरी घास ऊपर जंगल के भीतर कुछ चावल के कण पड़े हुए हैं। पुरुष ने कहा, स्त्री ने कहा, श्रीमान जी चलिए हम लोग यहाँ पर खाने, बड़े सुंदर सुंदर मोती जैसे दिख रहे हैं, इनको ले हम और बच्चों के लिए भी ले चले, खबरदार मत जाना, इस जंगल में कहां से आया चावल, कोई बनिया भी नहीं है, खेती भी नहीं है यहाँ चावल, यहाँ पर किसी बहेलिए ने जाल बिछा रखा है, जाएगी पकड़ लेगा, वह तुम लोगों को सब समय षड्यंत्र की बू आती है, मैं तो चली और चूर करके गई और चूरने। और इतने में एक काला मुस्कान बहेलिया पेड़ की आड़ में बैठा हुआ था, देखा ये चूरने लगी और मत्त हो करके बस ये जाल खींच दिया, जाल में वो गिर गई। अब तो रोने बिलबिलाने लगी और ऊपर से कबूतर भी रोता हुआ आया, तुम नहीं रहने से हमारे बच्चे में मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तुम रहने से इनका पालन पोषण तो कर ले। इतना विलाप करने लगा कि बहेलिया ने देखा और हंसता हुआ भविष्य बाण लेकर ऐसे मारा कि बाण यहां लगा, वो भी छटपट करता हुआ खून उगलता हुआ मर गया। वो ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया, इस मरे हुए कबूतर को और उस कबूतरनी को जाल में पड़ी हुई दोनों को पकड़ करके ले गया घर और पका करके खा। क्या तात्पर्य? हम लोग भी ऐसे ही हैं, मृत्यु नाच रही है, कब आ जाएगी और कब हमें निगल जाएगी, कोई ठीक नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्यारे बेटियों, जीवन का कोई ठीक नहीं है, कम मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी हाथ में एक सदाम दमड़ी लेकर के नहीं जाना है, एक रुआ भी नहीं जाएगा, और मरने पर कहां जाना होगा, कुत्ते शिकार सुपर ऊपर गधे के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, इस समय में भगवान का स्मरण कर लिया जाए। भगवान के नाम करने में न पैसा लगता है, न कौड़ी, न बहुत परिश्रम है, कुछ भी परिश्रम नहीं, चलते फिरते उठते बैठते दिन में रात में कोई नियम नहीं, भगवान का नाम कर सकते, माला से भी कर सकते हैं, बिना माला का भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए विद्वत ठाकुर जी की पूजा करें, नहीं कर सकते हैं उसका दर्शन करना चाहिए, आरती में आना चाहिए, भोग आरती में आना चाहिए, शाम को आरती आना चाहिए, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। इसके साथ में हमारा कल्याण हुआ, यही बात करते हैं। बहुत धन्यवाद।